नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी की इस ताज़ा कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेज़बान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेज़बान। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हमें कह सकते हैं आईना दिखाती है। डैन एरेली की द ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट डिसऑनेस्टी।
हाँ, मतलब बेईमानी के बारे में कड़वा सच।
बिल्कुल।
ये किताब पूछती है, भाई हम धोखा क्यों देते हैं? क्या हम सब थोड़े थोड़े बेईमान हैं? और ये सवाल आज के जमाने में बहुत मायने रखते हैं।
बिल्कुल रखते हैं।
जहां देखिए, छोटी मोटी हेरा फेरी से लेकर बड़े बड़े घोटाले, मतलब बेईमानी की खबरें तो आम हैं।
हाँ, लेकिन इस किताब की खास बात ये है कि ये सिर्फ बड़े स्कैम्स की बात नहीं करती, ये उन छोटी छोटी रोजमर्रा की बेईमानियों को देखती है जिनसे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हों।
अच्छा।
हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ईमानदारी आखिर है क्या चीज और हम खुद को असल में कितना ईमानदार समझते हैं।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, देखते हैं डैन एरेली हमें इंसानी फितरत के इस पहलू के बारे में क्या सिखाते हैं।
और हाँ, ये चर्चा किताब पर आधारित रिसर्च और लेखों के सार पर है।
बिल्कुल, शुरुआत करते हैं लेखक से। डैन एरेली ये कोई टिपिकल प्रोफेसर नहीं है, हैं तो ड्यूक विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, लेकिन इनकी कहानी बड़ी अलग है।
हाँ, मैंने भी सुना है, उनके काम में एक अलग तरह की गहराई है, उनके अपने अनुभव से आती है।
सही कहा, जवानी में एक बहुत भयानक हादसा हुआ था उनका। करीब 70% शरीर जल गया था।
ओह, बहुत बुरा हुआ।
हाँ, और फिर सालों तक अस्पताल में दर्द सहते हुए उन्होंने इंसानी बर्ताव, हमारी अतार्किकता जिसे इरेशनैलिटी कहते हैं, और दर्द को झेलने की क्षमता को बहुत करीब से देखा समझा।
अच्छा, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस उनके काम में झलकता है। बिल्कुल, और इसी ने उन्हें मानव मन की गुत्थियां सुलझाने के लिए प्रेरित किया। वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े नाम हैं, प्रिडिक्टेबली इरेशनल जैसी बेस्ट सेलर किताबें भी लिखी हैं उन्होंने।
हाँ, वो मुश्किल साइकोलॉजिकल आइडियाज को बहुत सरल बना देते हैं।
यही उनकी खासियत है, और वो सिर्फ थ्योरी पर नहीं दिखते।
अच्छा।
हाँ, वो बड़े अनोखे, मतलब क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं हमारी सोच को चैलेंज करने के लिए। बेईमानी जैसे मुश्किल विषय को भी वो एक साइंटिफिक नजरिए और साथ ही एक हमदर्दी के साथ देखते हैं।
कमाल है। तो अब आते हैं किताब पर, इसका मतलब मोटा मोटा सार क्या है, किस बारे में है ये?
देखिए, ये किताब बेईमानी को लेकर हमारी जो पुरानी सोच है ना, उस पर सवाल उठाती है।
पुरानी सोच मतलब?
मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि लोग धोखा देने से पहले पूरा हिसाब किताब लगाते हैं, फायदा कितना होगा, पकड़े जाने का रिस्क कितना है। इसे एरैली कहते हैं, SMROC, सिंपल मॉडल ऑफ रैशनल क्राइम।
SMROC, तर्क संगत अपराध का सरल मॉडल। हाँ, सुना है।
हाँ, लेकिन एरेली कहते हैं असल जिंदगी में ज्यादातर बेईमानी ऐसे नहीं होती। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग कोई बड़े चोर या धोखेबाज नहीं बनते,
तो फिर
हम थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हैं।
वो इसे फजिंग कहते हैं।
फजिंग मतलब थोड़ी हेराफेरी, एडजस्टमेंट।
हाँ, बिल्कुल वही।
ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ना दो इच्छाएं लगातार लड़ रही होती हैं।
दो इच्छाएं कौन सी?
एक तरफ तो हम बेईमानी से मिलने वाला फायदा चाहते हैं, चाहे वो थोड़ा ज्यादा पैसा हो या थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े।
हाँ, स्वाभाविक है।
और दूसरी तरफ हम अपनी नजरों में एक अच्छे ईमानदार इंसान भी बने रहना चाहते हैं।
अच्छा, तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। यहीं पर शायद वो फज फैक्टर वाली बात आती है।
एकदम सही पकड़ा। फज फैक्टर वो दायरा है, वो साइकोलॉजिकल स्पेस जिसके अंदर रहकर हम थोड़ी बेईमानी कर लेते हैं,
मतलब इतनी की फायदा भी मिल जाए।
हाँ, और हम खुद को शीशे में देखकर ये भी कह सकें कि हाँ, मैं तो ईमानदार हूँ। ये हमारी नैतिकता की वो फ्लेक्सिबल लाइन है जिसे हम जरूरत पड़ने पर थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं।
तो किताब का मकसद ये समझना है कि कौन सी चीजें हमारे इस फज फैक्टर को घटाती या बढ़ाती हैं, ताकि हम ऐसे हालात बना सकें जहां ईमानदारी ज्यादा आसान हो।
बिल्कुल, किताब यही बताती है कि क्यों अच्छे लोग भी कभी कभी गलत काम कर बैठते हैं और कैसे छोटे छोटे बदलाव भी बड़े असर डाल सकते हैं। चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, इनके बड़े मजेदार हैं।
हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो वो स्मॉर्क मॉडल को टेस्ट करते हैं अपने मशहूर मैट्रिक्स टास्क से। इसमें लोगों को कुछ मैथ्स पजल्स हल करने होते हैं और फिर खुद बताना होता है कि कितनी हल्की।
अच्छा,
अब ट्विस्ट ये था कि एक ग्रुप में उन्हें पता था कि कोई चेक नहीं करेगा, वो जो कहेंगे वही माना जाएगा। पजल शीट को खुद ही नष्ट कर देना था।
तो फिर तो लोगों ने खूब झूठ बोला होगा, ज्यादा बताए होंगे।
यही तो मजा है, लोगों ने झूठ बोला पर बहुत ज्यादा नहीं, औसतन लोग शायद 4 पहेलियां हल कर पाते थे, लेकिन दावा करते थे करीब 6 का, ज्यादा नहीं, बस 2 एक्स्ट्रा।
अच्छा, सिर्फ 2?
हाँ, इसे ही एरीली फजिंग कहते हैं। और सुनिए, जब इनाम की रकम बढ़ाई गई या पकड़े जाने का खतरा बिल्कुल कम कर दिया गया, तब भी इस फजिंग के लेवल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब पकड़े जाने का डर या बड़े इनाम का लालच ही सब कुछ नहीं है, हमारी अपनी जो इमेज है एक ईमानदार इंसान की, वो भी हमें रोकती है।
हाँ, ये बिल्कुल पारंपरिक सोच से हटके है। हम सिर्फ कैलकुलेटिंग मशीन नहीं है। अब एक और दिलचस्प चीज देखिए, मनोवैज्ञानिक दूरी।
मनोवैज्ञानिक दूरी, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, ये क्या है?
हाँ, एक प्रयोग में लोगों को पहेली हल करने पर सीधे कैश नहीं दिया।
तो क्या दिया?
उन्हें टोकन दिए गए जिन्हें बाद में पैसों में बदला जा सकता था।
बस एक स्टेप का फर्क।
हाँ, तो टोकन मिलने पर क्या हुआ, चीटिंग बड़ी या घटी?
बेमानी लगभग दोगुनी हो गई। दोगुनी सिर्फ टोकन की वजह से?
हाँ, जब मामला सीधे पैसों का नहीं लगता ना, जब बीच में टोकन या कोई और चीज आ जाती है तो धोखा देना आसान हो जाता है।
अरे हाँ, ये तो बिल्कुल रोजमर्रा की बात लगती है। जैसे ऑफिस से पेन या स्टेपलर घर ले जाना शायद उतना बुरा न लगे।
हाँ बिल्कुल,
जितना कैश बॉक्स से उतने ही पैसे निकालना।
हाँ,
या फिर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में कोई छोटा सा गलत चार्ज लग गया हो तो उसे इग्नोर कर देना शायद ज्यादा आसान है बनिस्बत दुकान पर कैश देते हुए बहस करने के।
बिल्कुल सही पकड़ा। ये दूरी हमें कम दोषी महसूस कराती है, हमारे फज फैक्टर को बढ़ा देती है। और बात सिर्फ पैसों की दूरी की नहीं है, कई बार हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। एक प्रयोग में लोगों को IQ टेस्ट दिया गया और उन्हें गलती से या जानबूझकर पहले ही आंसर की देखने का मौका मिल गया।
अच्छा, फिर तो स्कोर बढ़ा दिए होंगे सबने।
हाँ, स्कोर तो बढ़ाए, लेकिन मजेदार बात यह थी कि बाद में वो सच में ये मानने लगे कि उन्हें ज्यादातर जवाब पहले से ही पता थे।
क्या बात है, खुद को ही यकीन दिला लिया।
हाँ, इसे कहते हैं आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। हम अपनी बेमानी को जस्टिफाई करने के लिए कमाल की कहानियां गढ़ लेते हैं।
और आपने वो हितों के टकराव वाली बात कही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट।
हाँ, वो भी कुछ ऐसा ही है। जैसे अगर किसी आर्ट एडवाइजर को किसी पेंटिंग के ऊंचे दाम लगने पर ज्यादा कमीशन मिलता हो तो वो अनजाने में ही उस पेंटिंग को ज्यादा कीमती आंकने लगता है, भले ही वो खुद को निष्पक्ष समझ रहा हो।
यानी हम अनजाने में ही अपनी सोच को बदल लेते हैं ताकि फायदा भी हो जाए और हम ईमानदार भी बने रहें। वाकई दिमाग कैसे काम करता है।
और क्या, भारी हालात जैसे थकान या माहौल हमारी ईमानदारी पर असर डालते हैं।
बिल्कुल डालते हैं, इसे अहंकार रिक्तिकरण या ईगो डिप्लीशन कहते हैं।
अच्छा।
हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है ना, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, बैटरी की तरह।
अच्छा, कैसे पता चला?
एक प्रयोग में जिन लोगों को पहले कुछ देर तक ताजी बनी कुकीज खाने की इच्छा को रोकना पड़ा, जो कि काफी मुश्किल काम था क्योंकि साथ में मूली भी रखी थी खाने के लिए।
हाँ, मुश्किल तो है।
तो उन लोगों ने बाद वाले काम में जिसमें मौका था ज्यादा धोखा दिया।
मतलब जब हम थके हों, स्ट्रेस में हों या अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हों तो हमारी जो वो मॉरल बैटरी है वो डाउन हो जाती है।
हाँ बिल्कुल,
ये तो बहुत आम अनुभव है। जैसे दिन भर की भागदौड़ और ऑफिस के प्रेशर के बाद शायद ट्रैफिक का छोटा मोटा नियम तोड़ना ज्यादा आसान लगने लगता है।
सही बात है, और माहौल का भी बहुत असर होता है। एक प्रयोग तो गजब का था।
कौन सा?
जिन लोगों ने नकली डिजाइनर सनग्लासेस पहने थे।
हाँ।
उन्होंने बाद के कामों में ज्यादा धोखा दिया और दूसरों पर शक भी ज्यादा किया।
क्या कह रही है, नकली चश्मा पहनने से ऐसा क्यों भला?
शायद इसलिए कि वो छोटा सा एक्ट, नकली पहनना, जिसे वो जानते थे कि वो गलत है, उनकी अपनी नजर में उनकी छवि बदल देता है। वो एक तरह से सोचते हैं, अरे जब इतना कर ही लिया तो थोड़ा और सही।
ओह, इसे व्हाट द हेल इफेक्ट कहते हैं शायद।
हाँ वही, एक छोटी सी बेईमानी आगे और बेईमानी का दरवाजा खोल सकती है।
ये तो डरावना है। और क्या ये बेईमानी फैलती भी है, मतलब एक से दूसरे में जैसे बीमारी फैलती है?
हाँ बिल्कुल, इसे सोशल कंटेजन या सामाजिक संक्रमण कहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि अगर हम अपने ही ग्रुप के किसी को, जैसे अपने कॉलेज के साथी को, धोखा देते देखते हैं तो हम भी ज्यादा धोखा देने लगते हैं।
अच्छा, देखा देखी।
हाँ, लेकिन अगर धोखा देने वाला किसी बाहरी ग्रुप का हो, जैसे विरोधी टीम का सदस्य, तो हम कम धोखा देते हैं, शायद खुद को उनसे बेहतर दिखाने के लिए।
कमाल है, मतलब माहौल और हमारे आसपास के लोग हमारी नैतिकता पर बहुत गहरा असर डालते हैं।
हाँ, अगर सब लोग लाइन तोड़ रहे हैं या सिग्नल जंप कर रहे हैं तो हमें भी लगता है चलो हम भी कर लेते हैं, नॉर्म बन जाता है।
और एक और दिलचस्प बात पता चली, हम दूसरों की मदद करने के नाम पर ज्यादा आसानी से धोखा देते हैं।
दूसरों की मदद के नाम पर? वो कैसे?
इसे परोपकारी धोखा या एल्ट्रिस्टिक चीटिंग कहते हैं। अगर बेईमानी करने से हमारी टीम को या किसी और को जिसे हम पसंद करते हैं फायदा हो रहा हो तो हम ज्यादा विलिंग होते हैं चीट करने के लिए।
अरे वाह, मतलब अगर फायदा सिर्फ हमें नहीं बल्कि ग्रुप को मिल रहा है तो जस्टिफाई करना और आसान हो जाता है।
हाँ बिल्कुल। तो ये सब जानकर तो थोड़ी मतलब निराशा सी होती है कि हम कितने आसानी से फिसल सकते हैं। क्या कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या हम कुछ कर सकते हैं इसे रोकने के लिए?
हाँ, यहीं पर किताब थोड़ी आशावादी होती है। देखिए, एरेली बताते हैं कि जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे सजा बढ़ा देना या निगरानी सख्त कर देना, वो अक्सर छोटी मोटी रोजमर्रा की बेईमानी रोकने में उतने असरदार नहीं होते।
तो फिर क्या असरदार होता है?
कुछ बहुत ही सरल उपाय जो चौंकाने वाले रूप से कारगर हैं।
सरल उपाय जैसे?
जैसे नैतिक अनुस्मारक या मॉरल रिमाइंडर्स। एक प्रयोग में लोगों से काम शुरू करने से ठीक पहले सिर्फ 10 आज्ञाओं को याद करने को कहा गया, या फिर एक सम्मान संहिता या ऑनर कोड पर हस्ताक्षर करने को, बस इतना ही।
और नतीजा?
नतीजा ये कि बेईमानी लगभग गायब हो गई पूरी तरह से।
क्या बात है, बस एक रिमाइंडर से, काम शुरू करने से पहले।
हाँ, टाइमिंग इज की। अगर यही काम, मतलब साइन करना या याद करना, फॉर्म भरने के बाद कराया गया तो उसका कोई असर नहीं हुआ।
अरे
ये दिखाता है कि सही समय पर हमारी नैतिकता को जरा सा जगा देना, उसे एक्टिवेट कर देना बहुत शक्तिशाली हो सकता है। ये छोटे छोटे नजेज बड़े बदलाव ला सकते हैं।
वाह, ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से?
हाँ, कई सारे हैं। पहला तो जाहिर है वो फज फैक्टर, हम थोड़ा धोखा देते हैं पर इतना कि खुद को ईमानदार मान सकें। ये रैशनल क्राइम मॉडल को चैलेंज करता है।
दूसरा, हम अपनी बेईमानी को सही ठहराने, रैशनलाइज करने में उस्ताद हैं। ये जो खुद को कहानी सुनाना है यही छोटी मोटी बेईमानी की जड़ है।
बिल्कुल। तीसरा, मनोवैज्ञानिक दूरी। जब हम एक्शन के नतीजे से, खासकर पैसों से, दूर होते हैं तो धोखा देना बहुत आसान हो जाता है। ऑनलाइन दुनिया में तो ये और भी बढ़ गया है।
सही कहा। चौथा, ईमानदारी कोई फिक्स चीज नहीं है, ये हालात पर निर्भर करती है। थकान, तनाव, माहौल सब हमारी नैतिक क्षमता पर असर डालते हैं।
पांचवा, बेईमानी फैल सकती है। सोशल नॉर्म्स बहुत मायने रखते हैं। हमारे आसपास का माहौल और लोगों का बर्ताव हमें बहुत प्रभावित करता है।
और छठा, जो मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद देता है छोटे, सही समय पर दिए गए नैतिक अनुस्मारक या नजिस बेईमानी को रोकने में बहुत बहुत कारगर हो सकते हैं, सजा बढ़ाने से भी ज्यादा।
हाँ, किताब में कुछ बातें तो वाकई दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे पहला तो यही कि हम उस हद तक धोखा देते हैं जहां तक हम खुद को एक यथोचित ईमानदार व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाए रख सकें। ये फज फैक्टर का बिल्कुल सार है।
और ये भी कि कई लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा लेने का सामूहिक आर्थिक प्रभाव कुछ लोगों द्वारा किए गए बड़े धोखाधड़ी से कहीं ज्यादा होता है। ये सोचने वाली बात है। छोटे छोटे टैक्स की चोरी, ऑफिस सप्लाई घर ले जाना, इंश्योरेंस क्लेम में थोड़ी गड़बड़, ये सब मिलकर कितना बड़ा अमाउंट बन जाता होगा।
बिल्कुल। तीसरा अहम विचार, जब धोखा नकदी से एक कदम दूर होता है तो ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, स्टॉक मार्केट, ये सब हमें नतीजों से दूर कर देते हैं।
हाँ, और ये वाला तो कमाल का है जो आपने बताया, लोगों से फॉर्म के सबसे ऊपर जानकारी देने से पहले एक बयान पर हस्ताक्षर करवाने से कि मैं घोषणा करता हूँ कि जानकारी सत्य है, धोखाधड़ी लगभग खत्म हो जाती है। बाद में नीचे हस्ताक्षर करने का कोई असर नहीं होता। कितना सरल और कितना प्रभावी। सोचिए टैक्स फॉर्म पर या इंश्योरेंस क्लेम पर ऐसा किया जाए तो।
हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है। और आखिर में ये समझना कि ईमानदारी सिर्फ ईमानदार या बेईमान होने का फैसला नहीं है, ये ईमानदार होने की क्षमता के बारे में भी है। मतलब हमारे पास वो नैतिक रिसोर्स है या नहीं उस वक्त, ये भी मायने रखता है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम क्या कर सकते हैं इनसे सीखकर?
देखिए, पर्सनल लेवल पर सबसे पहले तो अवेयरनेस, खुद को जानना, पहचाने कि आप कब ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जब थके हो, तनाव में हो, या जब हितों का टकराव हो। शायद उन पलों में बड़े नैतिक फैसले लेने से बचें। अपने लिए छोटे नैतिक रिमाइंडर बना सकते हैं, जैसे कोई कोट लिखकर सामने रखना। और हाँ, कभी कभी नकदी इस्तेमाल करना भी शायद हमें थोड़ा ज्यादा ग्राउंडेड और सचेत रख सकता है।
अच्छा पॉइंट है। और काम की जगह पर, ऑफिस में या बिजनेस में?
वहां भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे वो फॉर्म वाला आइडिया, साइन ऊपर करवाना।
हाँ,
हितों के टकराव को सिर्फ डिस्क्लोज करने से बात नहीं बनती, उसे एक्टिवली मैनेज करना होगा, एक ऐसी कल्चर बनाना जहां छोटी मोटी गड़बड़ियों को भी नजरअंदाज न किया जाए, क्योंकि वो व्हाट द हेल इफेक्ट शुरू कर सकती हैं। और कोशिश करना कि लोगों को उनके काम के नतीजों से सीधा जुड़ाव महसूस हो, वो मनोवैज्ञानिक दूरी कम हो।
और समाज या पॉलिसी लेवल पर सरकारें क्या कर सकती हैं?
स्कूलों में सम्मान कोड को सिर्फ एक औपचारिकता न बनाकर उसे सच में लागू करना, उस पर बात करना, नियम सरल और पारदर्शी बनाना ताकि फज करने की गुंजाइश कम हो। और जैसा हमने कहा, सजा पर फोकस करने के बजाय रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देना, नैतिक नजास का इस्तेमाल करके लोगों को सही रास्ते पर लाना।
मेरे लिए तो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ज्यादा क्रिएटिव लोग ज्यादा धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो बहाने अच्छे बना लेते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
हाँ, ये काफी काउंटर इंट्यूटिव है।
और ये भी कि कितने सिंपल से रिमाइंडर्स इतने पावरफुल हो सकते हैं।
और मेरे लिए वो फज फैक्टर का कॉन्सेप्ट ही बहुत आंखें खुलने वाला था, और ये समझना कि कैसे हमारी अपनी ईमानदार छवि हमें पूरी तरह बेईमान बनने से रोकती है, लेकिन थोड़ी बेईमानी करने देती है, ये बहुत सटीक लगता है।
हाँ।
कुल मिलाकर ये किताब हमें सिखाती है कि बेईमानी कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, ये इंसानी स्वभाव का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और हालात पर निर्भर करने वाला पहलू है।
हाँ। और इसे समझना हमें न सिर्फ बेहतर सिस्टम बनाने में मदद कर सकता है, बल्कि शायद खुद को भी थोड़ा बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखा सकता है। ये हमें इंसान के स्वभाव को थोड़ी ज्यादा विनम्रता और यथार्थवाद से देखने का नजरिया देती है।
तो इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, अगर हम सब में थोड़ी बेईमानी करने की ये टेंडेंसी है और हम उसे जस्टिफाई करने में भी इतने माहिर हैं, तो क्या हम कभी सच में पूरी तरह ईमानदार समाज बना भी सकते हैं, या फिर हमें हमेशा इन साइकोलॉजिकल ताकतों से जूझते ही रहना होगा? सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकथ्य फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।